अध्याय 14 वाणिज्य एवं व्यापार विभिन्न कालों में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। भूमिका, व्यापार का विकास वैदिक काल के पहले नहीं हुआ था, उसमें आर्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। वे केवल कृषि और व्यवसाय का विकास करते हुए अपने ग्रामों और समाज की स्थापना में तत्पर थे। अतः वह युग विभिन्न उद्योग धंधों और शिल्पों व्यवसायों के प्रारंभिक विकास का युग था। कालांतर में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जब उनके समाज और कृषि व्यवसाय का उत्कर्ष हुआ, तब उन्होंने नगरों की स्थापना की तथा उन्होंने विभिन्न रूपों में संयोजित किया। प्राचीन भारतीय व्यापार प्रणाली का विशद अध्ययन करने के लिए इसे सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आंतरिक व्यापार, नंबर 2 प्राचीन भारतीय बाह्य व्यापार। सिंधु युगीन व्यापार, यह विकसित व्यापार का प्रारंभिक युग था। आंतरिक व्यापार इस सभ्यता का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात एवं बलूचिस्तान के कुछ स्थल थे। इन स्थलों से एक समान वस्तु उपलब्ध होने से यह प्रमाणित होता है कि उनमें पारस्परिक व्यापार संबंध स्थापित होते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अवशेषों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि गाड़ियों तथा पशुओं का प्रयोग व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। मुद्राओं पर नावों का चित्रांकन होने से यह आभास होता है कि वे नदियां पार करने के लिए नाव का प्रयोग करते थे। तत्कालीन व्यापारिक पदार्थों में बाजरा, गेहूं, कपास, तिल, मटर आदि थे। यहाँ के लोग आभूषण तथा अन्य सामग्रियां निर्मित करने के उद्देश्य से सोना, कोलर और अनंतपुर से चांदी, अफगानिस्तान सीसा, जस्ता और अगेट राजस्थान तथा बलूचिस्तान से मंगवाते थे और उनके बदले वे अपनी वस्तुएं देते थे। बाह्य व्यापार, सिंधु सभ्यता के काल से भारत का बाह्य व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। पश्चिमी एशिया के साथ भारत के बाह्य व्यापारिक संबंधों की विशेष जानकारी कुली संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति से होती है। पिगट के मतानुसार यह संबंध ईसा पूर्व 3000 या इससे पहले प्रारंभ हो गया था। दक्षिणी बलूचिस्तान की कुली संस्कृति के लोगों तथा सुमेर के प्रारंभिक राजवंशों के बीच 2800 ईस्वी पूर्व के कुछ बाद व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। स्थल व्यापार बलूचिस्तान के मार्ग से किया जाता था। इसी काल से सुमेर तथा सिंधु दोनों सभ्यताओं की वस्तुएं न केवल सुमेर के बाजारों तक ही आ पाती थी, बल्कि मिस्र, अनातोलिया एवं क्रीट तक पहुंच जाती थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि सागौन की लकड़ी, हाथी दांत, जहारात, मनकेत तथा मुर आदि पक्षी हड़प्पा संस्कृति के काल में भारत से मिस्र पहुंचे। मुर की खुदाई में जो चमकीले मनके प्राप्त है, वे दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी के बताए गए हैं। उस समय की व्यापारिक वस्तुओं में मुद्राएं, खनिज पदार्थों की गुड़िया, चांदी, सोना और तांबे की वस्तुएं, हाथी के दांत के कंघे और आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कुछ विशेष लकड़ी की वस्तुएं और मोती आदि मुख्य थे। इस संबंध में गार्डन चाइल्ड का अभिमत है कि सिंधु घाटी के नगरों की निर्मित सामग्रियां दजला फरात के बाजारों में बिकती थी और उधर सुमेरियन कला की कुछ शैलियां मेसोपोटामिया की सिंगार सामग्रियों तथा बेलन के आकार की मुहर का अनुसरण सिंधु निवासियों ने कर लिया था। व्यापार कच्चे माल तथा विकास की वस्तुओं तक ही सीमित न था। अरब सागर के तटों से लाई गई मछलियां मोहनजोदड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित थे। इसी प्रकार आशी मजुमदार का मत है कि मोहनजोदड़े के निवासी विश्व के बाहर देशों से विभिन्न प्रकार के धातुओं, कीमती पत्थरों एवं अन्य वस्तुओं के आयात के लिए गहरा संबंध स्थापित किए हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, कश्मीर तथा मैसूर के निकट पश्चिमी एवं मध्य एशिया से भी संबंध बनाए हुए थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में सुमेर की निर्मित अनेक वस्तुएं यथा सफेद संगमरमर की मुद्रा अंकित, स्टेटाइट मुद्रा रेखित, कार्नेलियन मनका, भेड़ का खिलौना, बासुला रूपी हथौड़ा, एक मिट्टी की मुद्रिकाएं प्राप्त हुई है। यहाँ से मिस्र के मनकों से निर्मित चांदी एवं सोने के गोल अच्छपट भी मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि उस समय सिक्कों का प्रचलन विनिमय और व्यापारिक उद्देश्य के लिए था तथा यह भारतीय व्यापार विदेशों तक विस्तृत था। व्यापारिक मार्ग, सैंधव सभ्यता के काल में भारत का विदेशी व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग का प्रमुख मार्ग बलूचिस्तान था, जहाँ से सुमेर, मिस्र, अनातोकिया एवं क्रीट तक पहुँचा जा सकता था। इसी प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से सामुद्रिक मार्ग द्वारा भी भारत का व्यापार होता था। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई में अन्य वस्तुओं के साथ एक कलापुट गोल मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर हड़प्पा की मुहरों की तरह अलंकरण है। ठीक ऐसी ही मुहरें फारस खाड़ी के क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जिनका काल संभवतः 2000 ईसा पूर्व से पूर्व का है। उन मुहरों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अरब सागर के माध्यम से गुजरात समुद्र तट से पश्चिमी देशों का व्यापार 3000 ईसवी पूर्व के अंत तक सुचारू रूप से संपन्न होने लगा था। तत्कालीन प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ईरान की खाड़ी, बहरीन द्वीप, कोष्टक में तेलमून और लोथल के उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों के बीच सामुद्रिक मार्ग द्वारा से व्यापारिक संबंध स्थापित था। इसी प्रकार सुमेर में उर नामक स्थान में हुई खुदाई में मक्कन व मगन तथा किल्हुओ शब्द अंकित टिकिया प्राप्त हुई है। इतिहासकारों ने मक्कन की पहचान बलूचिस्तान के सामुद्रिक तट मकराना से तथा किल्हुआ का परिचय भारत के समुद्री तट से किया है। इससे प्रमाणित होता है कि उर का सामुद्रिक मार्ग से मकरान तथा पश्चिम भारत के समुद्रिक तट से व्यापारिक संबंध था। अतः हम उपरोक्त साक्ष्यों के अनुशीलन के उपरांत यह कह सकते हैं कि लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से व्यापारिक वस्तुएं पहले तेलमून भेजी जाती थी, बाद में तेलमून से अन्यत्र विदेशों जैसे सुमेर, बेबीलोन, मिस्र आदि देशों को भेजे जाते थे। वैदिक कालीन व्यापार। ऋग्वेद में व्यापार करने वालों को वणिक कहा गया है। पणि लोग अधिक धन अर्जन के निमित्त सामान से लदे अपने जहाज को दूर दूर तक ले जाते थे। उस युग में पदार्थों का आदान प्रदान भी होता था। एक मंत्र से पता चलता है कि 10 गायों को देकर इंद्र की प्रतिमा ली गई थी। अन्य स्थल पर प्रसंग है कि एक व्यक्ति ने कम मूल्य पर अधिक मूल्य की वस्तु बेच दी, परंतु क्रय करने वाले के पास जाकर वह पुनः मूल्य नहीं बढ़ा सकता था। मूल्य कम हो या अधिक, एक बार बिक जाने पर उस मूल्य को दक्ष विक्रेता और दीन क्रेता दोनों स्वीकार करते थे। मूल भाव के आधार पर वस्तुओं के क्रय विक्रय का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है। ऋग्वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कुछ व्यापारी भी ऐसे थे जो अधिक लालच के कारण समुद्र में अत्यधिक आगमन करते थे और उसे मत डालते थे। इनकी ऋग्वेद में निंदा की गई है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का उद्धरण किया है। इसमें ऋषि अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे देव अश्विनी, इस प्रकार के लोभी प्राणियों के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो, जिससे उनका इस प्रकार का लोभ सदा के लिए छूट जाए। पाणिनी काल में व्यापार। पाणिनी व्यापारियों के लिए वणिक और वाणिज्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। देश में पृथक पृथक वस्तुओं के लिए पृथक पृथक व्यापारी थे। उदाहरणार्थ गांवों के व्यापारी गांव वाणिज्य कहलाते थे। भिन्न भिन्न नगरों और ग्रामों में बाजार आपड़ होते थे। वहां क्रेता और विक्रेता दोनों जमा होते थे। देश में अनेक व्यापारिक मार्ग थे जिनसे व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। सर्वप्रथम मार्ग उत्तर पथ था। वह पाटलिपुत्र से प्रारंभ होकर वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत, मथुरा, साकल, तक्षशिला, पुष्पकलावती, कपिसा आदि नगरों से होता हुआ वाहली देश तक गया था। इस प्रमुख मार्ग के अतिरिक्त देश के विविध नगरों को मिलाने वाले अन्य छोटे बड़े मार्ग थे। व्यापारियों और यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों पर विश्राम स्थल बने रहते थे। बौद्ध युगीन व्यापार। जातकों से विदित होता है कि व्यवसाय के अनुरूप विभिन्न विधियां बनी थी। बाजारों में कपड़े, रथ, तेल, अन्न, साग, रत्न, सोना, चांदी, आभूषण आदि का क्रय विक्रय होता था। मांस, शराब, अस्त्र एवं दासों के क्रय विक्रय भद्र एवं विशिष्ट जनों के सम्मुख नहीं किए जाते थे। सभ्य और भद्र व्यक्ति प्राय ऐसे व्यापारियों से विलग रहता था और ऐसे व्यापारिक स्थलों पर भी नहीं था। साग सब्जियां और खाद्य सामग्री नगर के द्वार पर ही विक्रय हेतु आती थी। वहां से अपने आवश्यकता अनुसार लोग खरीद कर ले जाते थे। सुनागार, पनागार, सुरायण आदि नगर के द्वार के निकट ही होते थे। बाजार नगर के भीतर होता। नगर वीथियों के दोनों किनारों पर आपड़ कोष्टक में दुकानें रहा करते थे, जिनमें नगरवासियों के आवश्यकता अनुसार विक्रय के निमित्त वस्तुएं सजाकर रखी रहा करती थी। कभी कभी व्यापारी अपनी वस्तुओं को वीथियों में रखकर नगर में घूमकर फेरी लगाते हुए बेचते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ऐसे व्यापारी अपनी वस्तुओं को गाड़ियों पर रखकर ले आते और ले जाते थे। निगम, ग्राम और नगर जैसे स्थान व्यापार के केंद्र होते थे, जहाँ छोटे बड़े सभी व्यापारी खरीद बिक्री के लिए जाते थे। भावता और पारस्परिक स्वीकृति के पश्चात ही वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी। घोड़े, हाथी, रत्नादि को खरीदने के लिए ऐसे व्यक्ति राजाओं के यहाँ भी हुआ करते थे, जो वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते थे। बौद्धिक में व्यापार और वाणिज्य की यथेष्ट उन्नति हुई, फलस्वरूप व्यापारी वर्ग अत्यधिक सम्मतशाली हो गया था। उस युग में आज की तरह कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जो अधिक लाभ की इच्छा में 200% तक लाभ कमाना चाहते थे। इस प्रकार के लोगों की संख्या तत्कालीन समाज में बढ़ गई थी। कतिपय सेठ 22 से लेकर 80 करोड़ तक के स्वामी होते थे। जातकों से ऐसा विवरण मिलता है कि कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के मोह से अनैतिक माध्यम को अपनाते हुए राज्य कर्मचारियों को घूस देते थे और अधिकाधिक धन कमाते थे। एक जातक में कहा गया है कि एक सेठ ने 20,000% लाभ प्राप्त किया, जिसमें 1,000 कर सापड़ गाड़ी रखने पर ले जाने, रक्षकों और प्रतिहारों को घूस देने में व्यय किया था। मूल्य निश्चित करने वाले राज्य के अधिकारी भी घूस लेते थे। शास्त्रकों का ऐसा अनुमान है कि उस समय देश में चोरों और डाकुओं की भी संख्या अधिक थी, जो व्यापारियों को समय पर लूटते थे। उस युग में कहीं कहीं पूरा का पूरा गांव होता था, जिसमें प्रायः 500 तक डाकू रहा करते थे। जाने वाले व्यापारियों को वो मार्ग में लूट लेते थे। मौर्युगीन व्यापार वाणिज्य। मौर्य युग में व्यापार एवं वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसका विस्तृत रूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बेची जाने वाली वस्तु पन्न कही जाती थी। व्यापार की देखभाल के लिए राज्य की ओर से जो सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उसे पन्याध्यक्ष की संज्ञा से विस्तृत किया जाता था। पन्याध्यक्ष यह वाणिज्य संबंधी नीतियों और व्यवस्थाओं का पुण्य ज्ञाता था। व्यापार की व्यवस्था के संबंध में उसके अधिकार व्यापक और विस्तृत थे। कौटिल्य का कथन है कि पन्याध्यक्ष स्थल और जल में उत्पन्न स्थल पद पर और जल पद पर से आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य में तारतम्य रखता था। साथ ही उन वस्तुओं की लोकप्रियता और अप्रियता के आधार पर न्यूनाधिक परिणाम में उनका संग्रह करवाता था। वह कौशल पूर्वक अपने यहाँ की संग्रहित वस्तु को दाम चढ़ाकर बेच देता था। अपनी भूमि में उत्पन्न राज्य की पन्न्य वस्तुओं की एक ही स्थान पर बेचता था तथा अन्य देशों के उत्पाद सामानों को विभिन्न स्थानों में बेचने का प्रबंध करता था। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय में राजा अपनी प्रजा के लाभ का सर्वदा ध्यान रखता था। यदि प्रजा को किसी प्रकार की हानि होती थी और राजा को लाभ होता था, तो उस लाभ के प्रकार को राजा त्याग देता था। स्वाभाविक रूप से नित्य प्राप्त होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर वह अंकुश लगाता था और उन वस्तुओं के अधिक एकत्र हो जाने का कोई कारण नहीं आने देता था। कौटिल्य के अनुसार व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। व्यापारियों के अनुचित लाभ पर राज्य का अंकुश था। स्वदेशी वस्तुओं को प्रत्यय प्रदान करने के विचार से बाजार में अपने देश की वस्तुओं को एक ही स्थान पर पहले बिकवाने का राज्य का उत्तरदायित्व होता था। पन्ने का जब कभी बहुत अधिक बाहुल्य हो जाता था, तो पन्याध्यक्ष देश में कृत्रिम कमी का वातावरण बनाकर आसपास के सभी पन्ने अपने अधिकार में करके मूल्य बढ़ा देता था। उत्पादन का मूल्य आते ही वह मूल्य गिरा देता था, जिससे प्रजा को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। शीघ्र ही खराब होने वाले माल को जल्दी बिकवाने का प्रयास किया जाता था तथा ठीके को बार बार परिवर्तित नहीं किया जाता था। बाजार में राज्य का पन्न स्पर्धा के कारण रुका रहता था, तो वैदेहको कोष्टक में व्यापारियों द्वारा एक ही मूल्य पर उन्हें बेचा जाता था। पन्याध्यक्ष खनिज पदार्थ, राज्य की भूमि और शिल्प केंद्रों से उत्पन्न वस्तुएं तथा नमक आदि पर नियंत्रण रखता था तथा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। राज्य की जनता को कम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए वह सर्वदा प्रयत्नशील रहता था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि व्यापार पर राज्य का पूर्ण रूपेण अंकुश था। कौटिल्य के कथनों का समर्थन मेगास्थनीज के तथ्यों से भी होता है। उनके अनुसार बिक्री के लिए आई हुई सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता था, तत्पश्चात उन वस्तुओं को मुहर बंद करके बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता था, जहां सभी वस्तुओं का मूल्य पहले से निर्धारित रहता था। मौर्य युग में पन संबंधित चुंगी तौल माप विदेशी व्यापार आदि का निरीक्षण क्रमशः शुल्काध्यक्ष पोताध्यक्ष और अन्य पाल किया करते थे। संस्थाध्यक्ष नामक अधिकारी वस्तुओं को गोदाम में रखने और बेचने की व्यवस्था करता था। जो व्यापारी घटिया किस्म का माल बेचता था उस व्यापारी को 54 पड़का देना पड़ता था। यह भी कहा गया है कि अगर सभी व्यापारी मिलकर माल को रोक लें और अनुचित मूल्य पर क्रय विक्रय करें तो उनमें से प्रत्येक पर 1,000 पड़का अर्थदंड लगा देना चाहिए। महाकाव्यों में व्यापार एवं वाणिज्य। रामायण में एक स्तर पर राम ने भरत की कृषि और वाणिज्य की हित रक्षा के लिए सलाह दी। महाभारत में कृषि गोरक्षा और वाणिज्य को लौकिक जीवन का आधार स्वीकार किया गया है। रामायणकालीन जनपद के वणिक व्यापार के हेतु दूर दूर तक जाते थे। नराज के जनपदे वाणिज्यो दूरगामिन गच्छन्ति क्षेम मध्ययायम यानम बहुपन्ने समाचित रामायण अयोध्या कांड 67/22। उस समय अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा उनके व्यापार के लिए व्यापारी दूर दूर के बाजारों में जाते थे। कभी कभी राजस्व अश्वमेघ आदि यज्ञों के समय विभिन्न वस्तु के उपहार अधीनस्थ राजाओं द्वारा अपने सम्राट को प्रदान किए जाते थे। उस काल में कम्बोज वाहिक और बनायु देश के अश्व तथा भिन्न देश के हाथी प्रसिद्ध थे। महाभारत के वर्णन अनुसार पांडवों को मिलने वाले उपहारों में पूर्वी देश के हाथी कम्बोज के ऊनी वस्त्र वाहिक और चीन के रेशमी वस्त्र अपरांत और पूर्वी क्षेत्र के सूती वस्त्र प्रज्ञ ज्योति अपरांत और पूर्वी क्षेत्र के आयुध पांडव और मलेश देशों के मोती तथा सिंधु देश के साली सम्मिलित थे। गुप्तकालीन व्यापार एवं वाणिज्य। गुप्तकालीन सम्राटों का शासन देश में स्थल मार्ग से आने वाले उत्तर पश्चिम के वाणिज्य पथ को संरक्षण तो देता ही था। हिंदू कश के शक मरुंड सहान शाही समुद्र गुप्त के समय से ही उनके प्रवाह के अंतर्गत थे। जब मालवा और गुजरात पर उनका अधिकार हुआ तब से यूरोप और पश्चिमी एशिया से संपर्क रखने वाला जल मार्ग भी उनके शासन के भीतर आ गया। समसामयिक साहित्य उस काल के वाणिज्य पर प्रचुर प्रकाश डालता है। उससे पता चलता है कि वाणिज्य से देश में असंख्य धन बरसने लगा था। वाणिज्य पतियों का बड़ा आदर था जिनसे राजा स्वयं आदर का व्यवहार करता था। वाणिज्य पथ दो थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग। सामुद्रिक यात्रा। जल मार्ग कल्याणी सुपरिक अथवा भिगिक से होकर भारत की खाड़ी पहुंचता था। वैसे तो रघुवंश का एक स्थल समुद्र यात्रा निषेध की बात करता है, परंतु कालिदास और गुप्तों का समकालीन चीन यात्री सहयान लिखता है कि चीन लौटते समय जब उसने सागर की यात्रा आरंभ की तब उसके साथ अनेक भारतीय सहयात्री थे। इसमें भागवत धर्म के मानने वाले सहयात्री भी थे जो सहयान के संकट का कारण बन गए। उन्होंने सागर में तूफान आने पर कहा कि बौद्ध चीनी यात्री के जहाज पर होने के कारण ही तूफान आया है, जिससे उसे जहाज से उतार देना या जल में फेंक देना चाहिए। देश के भीतर के व्यापारी। देश के भीतर का व्यापारिक मार्ग संभवतः वही था जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अथवा रघुवंश के रघु ने अपने दिग्विजय में लिया था। मध्य दक्षिण भारत जाने वाला एक तीसरा मार्ग वह था जिससे अज भोजों के राज्य वरार में भोजपुर गया था। दक्षिण से उत्तर जाने वाला एक मार्ग मेघदूत में मेघ ने लिया है, पर इसे कुछ परिवर्तन के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि मेघ को पर्वतों वनों आदि की रुकावट नहीं हो सकती थी। जैसे वास्तविक मार्ग में मेघदूत की राह के विपरीत उज्जयिनी अवश्य पड़ती होगी, यद्यपि काव्य में मेघ को उधर यक्ष के आग्रह जाना पड़ता है। पेरिस प्लस का रचयिता उज्जयिनी को इस मार्ग पर रखता है। उसने लिखा है बेरी गाजा कोष्टक में भड़ोज से पूर्व की ओर ओजोन नामक नगर है जो पहले राजधानी था जहां राजा निवास करता था। उस स्थान से बेरी गाजा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा भारत के अन्य भागों में भेजे जाने के लिए प्रत्येक पुण्य वस्तु लाई जाती थी। इस प्रकार उज्जयिनी उन सारे उत्तरी नगरों से व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़ी हुई थी जिनका माल पश्चिमी देशों को भेजे जाने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर जाता था। विदेशों के साथ वाणिज्य और निर्यात की वस्तुएं। बाहर जाने वाले जल मार्ग भी व्यापार की दृष्टि से पर्याप्त व्यस्त थे। सातवाह सागर की राह से वाणिज्य करने और उनके संकट साहस पूर्वक झेलते थे। हस्तिनापुर के एक महान सातवाह के अपने माल भरे जहाज के साथ सागर के तूफान में नष्ट हो जाने का उल्लेख हुआ है। परिप्लस में जिस सूची का उल्लेख है उत्तर पश्चिम के अनेक देशों जैसे सक स्थान, पोवेइस, कासपापिब्रा, परोपपिनिसस, हिंदू कुश, काबो लिटिस और चीन से बाक्सी अमुदीरिया की घाटी की राह स्थल मार्ग से आकर सारा पश्चिमी सागर तट के बेरी, गाजा, कोष्टक में भड़ोच आदि बंदरगाहों में पहले ही उतरता था, फिर पोतों में भर भर कर विदेश जाता था। उस ग्रंथ में बाहर जाने वाले जिस पन्य वस्तुओं का उल्लेख हुआ है उनकी सूची इस प्रकार है: गजदंत, गोमेद और लाल, मलमल और मोटा वस्त्र, रेशम, सूत, लंबी पीपल और अन्य वस्तुएं, शेर और पांड बंदरों से वस्तुएं बाहर जाती थी, विपुल मात्रा में कीमती मोती, गजदंत, रेशम, पारदर्शी अनेक प्रकार के पत्थर, हीरे, नीलम, कछुओं के आवरण, चोल राज से मोती और मलमल पुरो से और भी चीजें जैसे मोती, पारदर्शी पत्थर, मलमल और कछुओं के आवरण एवं उसी तट के उत्तरी भाग से बड़ी मात्रा में मलमल आती थी, कामरूप और ढाका अथवा गंगा की घाटी में बनने वाली प्रसिद्ध मलमल। कास्मस के विवरणानुसार सुगंधित बिच्छों का निर्यात कल्याण के बंदर से होता था और चीनी तांग वंश के वृत्तांत के अनुसार भारतीय चंदन और केसर का निर्यात तस्मिन फुतान कोष्टक में चंपा और किया ओची को होता था। चंदन की लकड़ी की मूर्तियां भी बनती थी। भारतीय चंदन की बनी ऐसी ही एक बौद्ध मूर्ति 519 ईस्वी में फुनान नरेश रुद्र वर्मा ने चीनी सम्राट को भेजी थी। राजपूत कालीन व्यापार एवं वाणिज्य हर्ष के पश्चात भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित हो गया था। प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों का संघर्ष अवश्य चलता था, परंतु व्यापार में किसी प्रकार की अवनति नहीं हुई थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार गुप्त काल के समान ही चलता रहा। इतिहासकार अलबुर्नी के मतानुसार राजा व्यापारियों से आय कर लेता था, ब्राह्मणों से आय कर नहीं लिया जाता था। उस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत उन्नतशील था। इस काल में विदेशी आक्रमण होने लगे थे, परंतु उनका व्यापार बहुत उन्नतशील था। उस समय आंतरिक व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। सामान बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट तथा गधों से ढोया जाता था। बेहद संहिता से ज्ञात होता है कि उस समय आंतरिक व्यापार गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों से होता था। व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बड़े बड़े जहाजों और नावों का निर्माण कराया जाता था। उस समय भारतीय व्यापारियों ने व्यापार की उन्नति के लिए पाश्चात्य देशों में व्यापारिक उपनिवेश बनाने लगे थे। उस समय भारतीय चंदन, अफीम, नील, विभिन्न प्रकार के मसाले, रत्न, औषधियां, ऊनी, सूती, रेशमी तथा मलमल के वस्त्र तथा अन्य सुगंधित वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। चीनी इतिहासकारों के द्वारा भारत और चीन के व्यापार का भी वर्णन मिलता है। डॉक्टर केटी शाह का अभिमत है कि प्रारंभ से लगभग 17वीं शताब्दी तक भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में सबसे आगे रहा। प्राचीन भारतीय विदेशी व्यापार। प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार प्रागैतिहासिक काल से ही चलता आ रहा है। जब वैदिक आर्यों के आने के पूर्व भारतीय निवासियों विदेशियों से अपना व्यापारिक संबंध रखते थे तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे। उस समय लोग स्थल और जल दोनों मार्ग का उपयोग करते थे। सुमेर और सिंधु इस युग में इन दोनों सभ्यताओं के लोगों का व्यापारिक संबंध था, जो बलूचिस्तान के माध्यम से स्थापित हुआ था। सिंधु सभ्यता की वस्तुएं सुमेर के बाजारों में बिका करती थी। वस्तुओं में प्रमुख मुद्राएं सोने, चांदी और तांबे की वस्तुएं, मोती, हाथी दांत के कंघे और आभूषण, अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र, लकड़ी के सामान आदि। भारत में बनी मुद्राएं तथा गांठदार मिट्टी के पात्र मेसोपोटामिया पहुँचते थे। ताम्रकार सुमेर की तरह यहाँ भी संगा चढ़े हुए कांस्य का उपयोग करते थे। इन वस्तुओं से भारत के विदेशी व्यापार का ज्ञान होता है। उस समय समुद्र के मार्ग से भी पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। संभवतः लोथल उस समय समुद्री बंदरगाह था। वहाँ की खुदाई से डॉकयार्ड इसका संकेत देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के वैदेशिक व्यापार का श्री गणेश वैदिक काल से ही था। उसके पश्चात भी इस व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। यहाँ तक कि बौद्ध काल में तो इसका विकास चरम सीमा पर था। यह सर्वमान्य बात है कि पश्चिमी एशिया के आसुर, बेनीपाल, ईसा पूर्व 668 से 626 राजा के पुस्तकालय में प्राप्त सिंधु शब्द वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वास्तव में कपास का द्योतक है। इस तथ्य से पता चलता है कि आसुर बेनीपाल एक प्रसिद्ध कृषि प्रिय राजा था। उसने भारत से बहुत पौधे मंगाए थे जिनमें भारत के ऊन के पौधे भी थे। इससे स्पष्ट है कि भारत के से कपास का व्यापारिक इतिहास पुराना है। प्राचीन नगर मधुर के चंद मंदिर में तथा राजा नेबुकेडनेज़र के महल में भारतीय इमारती लकड़ी पाई गई। ये दोनों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। सलमनसार तिथि ईसा पूर्व 860 के स्तंभ पर बंदर भारतीय हाथी और बैक्टीरिया के ऊंट खुदे हुए हैं। प्राचीन इतिहासकार एकिनियस से पता चलता है कि टालेमा फिलडेल्फास के जुलूस में भारतीय स्त्रियां भारतीय शिकारी कुत्ते और भारतीय गायें भी रहती थी तथा साथ ही ऊंटों पर भारत के मसाले ले जाया जाते थे जिनकर देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। रोम का सुप्रसिद्ध लेखक प्लिनी 78 ईस्वी के लगभग जिसने रोम निवासियों की अपव्ययता की कड़ी आलोचना की है जोरदार शिकायत करता है कि भारत व्यापार के कारण रोम का कोषागार बहुत खाली हो जाता है। प्राचीन रोम के सिक्कों का दक्षिण भारत में पाया जाना तथा दक्षिण भारत के साहित्य में रोम के साथ व्यापारिक संबंध के उल्लेख आदि से स्पष्ट हो जाता है कि ईसवी सन के प्रारंभ में रोम और दक्षिण भारत के बीच बहुत जोरदार व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया मिस्र और यूरोप के पश्चिमी छोर से मालाबार के किनारे तक व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। हिंदू साहित्य में भारत का विशेषकर दक्षिण भारत की बनी हुई बहुत सी चीजों का उल्लेख है। प्राचीन रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार टेटिसस ने लिखा है कि एक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप के उत्तरी समुद्र में रेती में फंस गया था। एक सोडस में भी एक भारतीय व्यापारी का उल्लेख आता है जो यूनानियों को अरब समुद्र में से भारत के मालाबार किनारे तक लाया था। मिस्र के प्राचीन लेख में सोफन एंडीज नाम के एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक का उल्लेख आता है। इस प्रकार इन परमाणु से सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार बहुत पुराना है और वह विश्व में बहुत दूर दूर तक फैला था। जातककालीन वैदेशिक व्यापार जातक साहित्य में समुद्र यात्रा और वैदेशिक व्यापार का वर्णन कितने ही स्थानों पर आता है। विनय पिटक में पुण नामी एक भारतीय व्यापारी के 6 बार समुद्र यात्रा करने का वर्णन है। 7वीं बार उसके साथ श्रावस्ती के कुछ बौद्ध यात्री भी थे जिनके संसर्ग से वह बौद्ध बन गया। सुत्त पिटक में दूर दूर के देशों तक की जाने वाली समुद्र यात्रा का वर्णन है। संयुक्त निकाय व अंगुत्तर निकाय में 6-6 महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वर्णन है। पंडर जातक में कहा गया है कि 500 यात्री जब समुद्र यात्रा कर रहे थे तब 17 दिन की यात्रा करने के बाद दुर्घटना हो गई जिसमें सभी यात्री डूब गए। वाल्लहस जातक से पता चलता है कि ताम्रपर्णी की समुद्री यात्रा में लोगों को प्राण से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि वहां तक यक्षिणियां रहती थी जो भटके हुए यात्रियों को मार डालती थी। एक अन्य जातक में उल्लेख है कि भारत के पूर्वी प्रदेश के वाड़िक चंपा नामक बंदरगाह से होते हुए स्वर्ण भूमि की ओर जाते थे। स्वर्ण भूमि के अंतर्गत वर्मा मलाया श्याम कंबोडिया अनाम आदि प्रदेश सम्मिलित थे। इस प्रकार जातकों में भारतीय व्यापारियों की अनेक कथाएं मिलती हैं जो व्यापार के लिए अनेक कष्ट उठाकर भिन्न देशों में जाते थे। महाकाव्यों में वैदेशिक व्यापार वाल्मीकि रामायण में कितने ही स्थल हैं जहां से दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र द्वारा आगमन का उल्लेख होता है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव सीता की खोज के संबंध में बंदरों को उन देशों का नाम बताते हैं जहां सीता के रहने की संभावना थी। किष्किंधा कांड में कोसकर देश का उल्लेख है जिससे चीन का तात्पर्य है। एक जगह यवद्वीप व स्वर्णद्वीप का उल्लेख है जिनका संबंध जावा और सुमात्रा से है। इसी प्रकार लोहित सागर का भी उल्लेख आ जाता है। अयोध्या कांड में एक जगह नौका युद्ध की तैयारी का वर्णन आता है। रामायण में उन व्यापारियों का भी उल्लेख है जो समुद्र द्वारा दूर दूर के देशों को अक्सर जाया करते थे और राजाओं के लिए अच्छी अच्छी भेंट लाते थे। इसी प्रकार महाभारत में राजसूय यज्ञ तथा अर्जुन व नकुल की दिग्विजय के संबंध में भारत के बहुत से देशों का वर्णन आता है जिनसे भारत का संबंध स्थापित हो चुका था। सभा पर्व में प्रसंग है कि सहदेव बहुत से समुद्रस्थ द्वीपों में गया व उसने वहां के सब मल्लेच्छ निवासियों को जीत लिया। द्रोण पर्व में आधी से त्रसित नाविकों को द्वीप में पनाह लेने का उल्लेख है। उसी पर्व में दूसरी जगह एक बड़े समुद्र में आधी द्वारा छिन्न भिन्न किए गए जहाजों का उल्लेख है। कर्ण पर्व में प्रसंग है कि कौरवों के योद्धा इस प्रकार घबरा गए जैसे गहरे समुद्र में आधी द्वारा अपने जहाजों के छिन्न भिन्न किए जाने पर व्यापारी लोग घबराते हैं। एक अन्य जगह विदुर द्वारा विशेष रूप से बनवाए गए जहाज के नष्ट हो जाने पर पांडवों के बच जाने का वर्णन आता है। वह जहाज बहुत बड़ा यंत्र युक्त था, उसमें युद्ध संबंधी सब प्रकार के हथियार थे। सूत्रों में वैदेशिक व्यापार। बौधायन धर्म सूत्र में धार्मिक ब्राह्मणों के लिए समुद्र यात्रा निषिद्ध है, किंतु उसमें यह भी उल्लिखित है कि उत्तर के निवासी उक्त नियम का उल्लंघन करते थे। उत्तर में रहने वाले के लिए ऊंट, घोड़े, खच्चर आदि का व्यापार करना निषिद्ध था। बौधायन धर्म सूत्र 1/18/14 व गौतम धर्म सूत्र 10/33 में राजा को नाविकों द्वारा दिए जाने वाले कर को निश्चित किया गया है। इस नीतियों में वैदेशिक व्यापारियों का उल्लेख है तथा नदी व समुद्र द्वारा यात्रा के बारे में लिखा गया है। मनु 8/404/406 आगे मनु ने समुद्र यात्रा की सुरक्षा संबंधी बहुत से नियमों का उल्लेख किया है। उन्होंने एक जाति विशेष का वर्णन किया है जिसका नाम व्यापार तथा विदेश की वस्तुएं तथा वहां की भाषाओं की जानकारी प्राप्त करना था। मध्ययुगीन वैदेशी व्यापार, इसकी चर्चा कौटिल के अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से मिलती है। कहा गया है कि नवाध्यक्ष नामक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नदी, समुद्र आदि सभी जल मार्ग आते थे। वह समुद्र, नदी आदि के तट पर बसे हुए लोगों से राजकीय कर लेता था। कहा गया है कि दिग्भ्रम और तूफान से लदे हुए माल पानी से जाने पर उसका कर छोड़ देता था। बंदरगाह पर पहुंचते ही व्यापारी वर्ग का माल वह बाहर भेज देता था। चलती ही नौका जब शुल्क क्षेत्र में पहुंचती थी तब शुल्क ले लिया जाता था। मार्ग में मिलने वाले चोरों और डाकुओं की नौकाओं को वह नष्ट कर देता था। इसके साथ ही वह शत्रु देश को जाने वाली और नियमों का उल्लंघन करने वाली नौकाओं को भी विनष्ट कर देता था। वैदेशिक व्यापारों के बारे में पन्याध्यक्ष का योग तो वास्तव में सराहनीय रहा है। विदेश जाने वाले व्यापारी के लिए कौटिल्य के अनेक निर्देश हैं। उनका कथन है कि पन्याध्यक्ष के अधीन अपने देश का कोई व्यापारी विदेश में व्यापार करने जाए और वहाँ किसी विपत्ति में पड़ जाए तो वह अपने माल एवं अपने शरीर की रक्षा करे। जब तक वह परदेश से विदेश स्वदेश ना लौट जाए तब तक उस देश के राजा को प्राप्त सारा कर चुका कर वाणिज्य व्यवहार करता रहे। इसी प्रकार यदि कोई वणिक जलमार्ग में जाकर परदेश में वाणिज्य करे तो उसे यान भाटक, नौका का भाड़ा, पथ्यदान, माल के भोजन का खर्च, अपने और विदेशी माल के मूल्य का तारतम्य, यात्रा काल भय, प्रतिकाल मार्ग में चोरी आदि के भय दूर करने का उपक्रम और पन्न्य पत्तन चारित्र, जिस देश में जाना हो वहाँ का आचार व्यवहार में जानकार होना चाहिए। कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रांत के कुषाण राजवंश और दक्षिण के सातवाहन वंश के समय का विदेशी व्यापार अधिक समुन्नत हुआ। कुषाण राजाओं के समय भारत के व्यापारी मध्य एशिया तक आते हैं और भारतीय वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। दक्षिण भारत के सातवाहन राजवंश के काल में भी भारतीय व्यापार का अनुगमन विकास हुआ। सातवाहन मुद्राओं पर नौ पोतों के चित्र इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन युग में समुद्री व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। फलतः भारत और पश्चिमी देशों के बीच का संपर्क और घनिष्ठ हुआ। मिस्र, रोम और यूनान आदि देशों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, प्रसाधन सामग्री आदि भारत से भेजी जाती थी। गुप्त युगीन वैदेशिक व्यापार। गुप्त युग में भारत के वैदेशिक व्यापार का सर्वोत्तम विकास हुआ था। यहाँ से विभिन्न वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थी और विदेशों से भी विभिन्न वस्तुओं का भारत में आयात होता था। पूर्वी देशों में ब्रह्मा, चीन और स्वर्ण भूमि प्रमुख थे। चीनांशुक नामक कौशेय वस्त्र भारत के विभिन्न नगरों में जाकर बेचे जाते थे। कालिदास ने अपने ग्रंथों में चीनांशुक वस्त्रों का उल्लेख किया है। कम्बोज से रघु के घोड़े को उपहार मिला था। ऐसा लगता है कि भारत में उस देश से घोड़े आयात किए जाते थे। पश्चिम के पारसिक और यमन जैसे देश से भी घोड़े भारत में विक्रय के लिए लाए जाते थे, इसलिए उन घोड़ों को रघुवंश में अस्त्र साधन कहा गया है। उस युग में भारत में भी अनेक वस्तुएं निर्यात की जाती थी। बड़े बड़े पोतों पर बैठकर भारतीय स्वार्थवाही प्रतिकूल वायु के बिना परवाह किए समुद्री तूफान जैसी अनेक कठिनाइयां झेलते हुए सुदूर देशों तक जाते थे। शाकुंतलम में एक स्थान का प्रसंग है कि हस्तिनापुर का एक प्रतिष्ठित सातवाह समुद्री तूफान के कारण अपने माल भरे पोत के साथ सागर में समा गया था। उस युग में भारत की विभिन्न वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थी। चीनी यात्री स्वांग चांग के अनुसार पश्चिमी में कापिसा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न वस्तुएं आती थी जो ईरान से होती हुई यूरोप तक जाती थी। कादम्बरी में प्रसंग है कि पारसिक देश के राजा ने भारत के राजा के लिए इंद्रायुध नामक अश्व भेजा था। हर्ष की सेना में पारसिया वन्य कम्बोज आर्त भारद्वाज और सिंध के घोड़े थे। बाण ने लिखा है कि तत्कालीन समाज में चिनांसुक नामक वस्त्र बहुत अधिक लोकप्रिय था। हर्ष के समय में भी भारतीय वस्तुओं की विदेशों में मांग थी। कागज, मसाले, कपूर, विभिन्न प्रकार के महान वस्त्र, गोमेद, हीरा, बद्राग आदि विभिन्न रत्न प्रसाधन सामग्री, धातु के कलात्मक बर्तन आदि विदेशों को भेजे जाते थे, तथा विदेशों से चिनांसुक जैसे वस्त्र, अश्व, मदिरा, स्वर्ण और रजत मुद्राएं भारत में प्राप्त की जाती। इसके अतिरिक्त स्वर्ण और रजत जैसी अन्य धातुएं भी चीन से भारत आती थी। सुमात्रा, जावा, बेर्निया आदि द्वीप समूह से अन्यान्य मसालों के अतिरिक्त गोल मिर्च, सुगंधित लकड़ी, लौंग, तमाल, मंदार आदि आते थे।